एकदम अपने स्वरूप को देखते रहो। ये तो तमाशा चल रहा है, तमाशा। अपन नाटक देखने जाते हैं ना, तो नाटक में शुरुआत भी होती है और एंडिंग भी होती है। आपने पहले वो देखे होंगे नाटक, तो शुरुआत भी होती है और एंडिंग भी होता है। एक्टर आता भी है और एक्टर जाता भी है। ऐसे ही अपन ने पूरा तमाशा देख लिया देह का। तमाशा मतलब नाटक,
नाटक
अपन ने उसका नाटक देख लिया। अब उसका नाटक खत्म होने वाला है तो वो अपना दूसरा नाटक दिखा रही है। अपन को तमाशगीर बन के देखना है, जैसे नाटक में देखते ना दर्शक, ऐसे दर्शक दीर्घ से देखते रहो क्या क्या हो रहा है। अपन में कुछ नहीं हो रहा है, अपन तो देखने वाले। और जितनी सजगता से देखोगे आप उतना मजा आएगा। उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, उसमें जुड़ोगे नहीं तो मजा बहुत आएगा। रोड पर किसी का एक्सीडेंट होता है, वो कोई अजनबी होता है, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। वो तो पता चल जाए कि अपने नाती है, हिमालय है, तो अरे तकलीफ होने लगती है। तो तकलीफ एक्सीडेंट की नहीं है, अपनेपन की है। ऐसे ये देह में जो कुछ भी हो रहा है वो तकलीफ का कारण नहीं है, तकलीफ का कारण उसमें अपनापन है। तो अपन ही नहीं है वो, अब क्या तकलीफ करना। जैसे पड़ोसी घर में आग लगती है तो अपन आराम से देखते रहते हैं, ऐसे आराम से देखते रहो क्या क्या हो रहा है। अपना कुछ नहीं बिगड़ा है, अपन अपना बिगाड़ते हैं इसके बिगड़ने से। ये तो अपने परमाणुओं का परिणमन है। शुरुआत में चमकता दमकता रहता है, बाद में मुरझा जाता है। बचपन में चहकता है, बुढ़ापे में शिथिल हो जाता है। ये तो पुतगल का खेल है, अपना खेल थोड़ी है। अपन तो अपना दूसरा खेल खेलेंगे। अब अपन को थोड़ी दोबारा किसी माँ के पेट में आना है। और आप देह की तरफ नजर रखे रहोगे तो फिर से देह मिल जाएगी। बहुत अच्छा अवसर है, देह की तरफ देखना बंद कर दो, मिलना ही बंद हो जाएगी, चक्कर ही खत्म हो जाएगा। रोग की तरफ देखना बंद कर दो तो दोबारा रोग ही नहीं होगा। अपने बड़े पंडित साहब के वचन है, अज्ञानी को देह का रोग रोग है, ज्ञानी को तो देह ही रोग है। अब आप देह की तरफ देखते रहोगे तो रोग दिखता रहेगा आपको। अपन देह ही नहीं है, अपन किसकी तरफ देखते रहेंगे। अपने को रोग ही नहीं है, रोग अपन को ही नहीं है तो अपन कहाँ से रोगी हो गए। अपन को देह ही नहीं है तो अपन कहाँ से पेशेंट हो गए। सब देखने का तो कमाल है, इसलिए आप तो बिल्कुल मस्ती से देखते रहो, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अब छुट्टी रह गई थोड़े रहने की, जी कर मत यो छोटो काहे तुम बिनु कारण दुख भोगे। बिना मतलब के दुख भोग रहे हैं। अरे इसकी जितने दिन रहना रहने दो, नहीं रहना मत रहने। और यहाँ से अपन जाएंगे भी तो अपना क्या छूट रहा है यहाँ पे। सड़ा सड़ा दे छूट, कल छूटती आज छूट जाए। झोपड़ पट्टी छोड़ने में किसको तकलीफ होती है
दादाजी?
हाँ, झोपड़ पट्टी छोड़ने में किसी को तकलीफ नहीं होती दादाजी। छोड़ो झोपड़ पट्टी को, इसके पहले कि ये हमें छोड़े, हम ही छोड़ देंगे इसको। ये कौन होती है हमें छोड़ने वाली, हम पहले ही छोड़ दे रहे हैं इसको। ये कौन होती है हमें मारने वाली, हम पहले इसको मरा हुआ जान रहे हैं। ये देह चिरकाल की मुई मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। मैं आ गया तो जिंदा जिंदा कहने लगे लोग इसको, और मैं चला जाऊंगा तो लोग मुर्दा कहेंगे। लेकिन मैं तो पहले से ही जानता था कि ये सदा से मुर्दा है और मैं सदा से जिंदा हूँ। इसलिए जिंदा दिल होकर जियो, मुरझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही यहाँ से जाने की बात, तो बहुत अच्छा सुखद अवसर आने वाला है। आप यहाँ से देवगति में जाओगे तो वहाँ से सिमंदर भगवान के पास जाने मिलेगा, साक्षात दर्शन होंगे आपको भगवान के। यहाँ तो भगवान के दर्शन ही नहीं है, पंचम काल में रह के क्या करोगे आप। अभी आपको गुरुदेव श्री मिलेंगे ना स्वर्ग में चर्चा करने के लिए। कुंद कुंद आचार्य से पूछे ना छठी गाथा में क्या लिखा था आपने, बताओ। हाँ, अमृतचंद आचार्य मिलेंगे आपने छाती की चर्चा करने के लिए। यहाँ रखा क्या है अपना, यहाँ क्यों रहने कहते हो आप, यहाँ कुछ नहीं है। अपने तो बिल्कुल भावना भाव है, यही भावना है भगवन तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। दादाजी मुझे तो ऐसा लगता अपन मुंह में जबरदस्ती दुखी होते। अरे साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने मिलेगी, वहाँ देह ही नहीं मिलेगी, औदारिक शरीर ही नहीं मिलेगा, कभी रोग नहीं आएगा, कभी शोक नहीं आएगा, कभी कोई बाल बच्चों का चक्कर नहीं पड़ेगा। आराम से देव साथ गुरु की सेवा करते रहना और खूब आराधना करके मस्ती करना, इससे रोने की आवश्यकता ही नहीं है, रोना धोना क्यों करें हम। और इधर यदि पॉजिटिव तरफ इस तरफ से देखो, देह की तरफ से, तो अच्छा है, होश रहते जितने उदय आने हैं आ जाएं, क्योंकि इनकी निद्रा यहाँ पर नहीं होगी तो कहाँ पे होगी, इसलिए इनका आना बहुत जरूरी है। पूरी निद्रा कर लो, पूरी निद्रा, और बुला लो, और बुला लो कर्मों को कि आ जाओ वेलकम, जब तक मुझे होश है तुम्हें जितने आने आ जाओ, जितने रोग तुम्हें आने आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जाने का काल आ गया है, अब तुम भविष्य में हमारे पास नहीं रहने वाले हो, इसलिए जाओ जाओ यहाँ से। और हम जब स्वर्ग जाएंगे और तो केवली भगवान के पास जाएंगे तो ये पाप मेरे साथ कैसे जाएगा, इसलिए इसकी निर्जरा होनी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको स्वागत करो इनका, बुला लो, ये कर्म अपने ठाट सू दिखाता है किसे, आ जाओ जितने कर्मों को आना आ जाओ, जितने उदयों को आना है आ जाओ, जितनी प्रतिकूलताओं को आना है आ जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, न मुझे जीने की तमन्ना है और न मरने की ख्वाहिश, क्योंकि मैं तो सदा से जीता हूँ और मार कोई मुझे सकता नहीं। इसलिए हम चैतन्य के बल को बनाए रखो, अपनी वही पूंजी है अपनी, वो पूंजी बनाकर ले जाना यहाँ से, अपनी कमाई खोना नहीं। कोई व्यक्ति बाहर जाता है ना, पहले जमाने में आता था प्रथमान युग में, 12 वर्ष के लिए प्रदेश में गया, वो खरीदी करने के लिए सामान वगैरह और धन कमाने के लिए, बाद में जहाज डूबने लगा तो सबसे पहले उसने वो संभाला जिसमें धन था, बाकी सब डूबने दिया। ऐसे आप भी अपना चैतन्य धन संभाल लेना, बाकी जिसको डूबना डूबने दो, देह को जाना जाने दो, आप तो अपने चैतन्य धन को संभाल के रखो। क्या है चैतन्य धन, कि अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, भगवान हूँ, इस बात को भूलना नहीं आप। स्वभाव की श्रद्धा सबसे बड़ी पूंजी है, जो अनंत काल तक रत्नत्रय का व्यापार चलता है उस पूंजी से। इसलिए अपने ज्ञान की पूंजी को, श्रद्धा की पूंजी को खोना नहीं। और अपना तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो देह अपने ज्ञान में जब आई नहीं है तो हम देह वाले कहाँ से हो गए, रोग जब अपने ज्ञान में आए ही नहीं है तो हम रोगी कहाँ से हो गए, जब बुढ़ापा हमारे ज्ञान में आए ही नहीं है तो हम बूढ़े कहाँ से हो गए। क्या दर्पण में झलकने वाली आग दर्पण को गर्म करती है,
नहीं,
लेकिन दर्पण का निर्णय होता है तो हम निश्चिंत होते हैं, और अपने हृदय में निर्णय करते हैं तो हम निश्चिंत रह सकते हैं।
भैया कह रहे हैं कि दर्पण में झलकने वाली आग क्या दर्पण को गर्म करती है, नहीं करती है, तो जैसे हमें दर्पण का निर्णय है वैसे अपने स्वभाव का निर्णय हो जाए कि राजाधिक भाव मेरे स्वभाव में झलकते जरूर है लेकिन इससे मेरा स्वभाव मलिन होता
नहीं है। रोग झलके ज्ञान में पर रोग नहीं वह ज्ञान है, नहीं रोग कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। अरे ज्ञान में ज्ञान के अलावा है क्या, ज्ञानी ज्ञान की दुनिया में नहीं जीते क्या, हम भी ज्ञान की दुनिया में जिएंगे। और कितनी सुखद बात है कि आत्मा जाता है तो अपना सब कुछ लेके जाता है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाता है, इसलिए हमारा यहाँ छूट क्या रहा है जो हम दुखी हूँ, पर यहाँ जो कुछ छूटना है वो यहीं का था, अच्छा वह छूट गया, इतनी गंदी देह लेके कहाँ जाते हैं आप, आपको वहाँ देवगति में एंट्री नहीं मिलती इस देह के साथ, इसलिए आप तो निश्चिंतता से मस्ती करते रहो, चैतन्य का रस पीते रहो, आनंद भोगते रहो। और ये आनंद को आर्टिफिशियल नहीं है, आंसू आते हैं तो आ जाने देना, राग आता है तो आ जाने देना, क्योंकि वो सब अपनी मर्यादा के बाहर है, अपनी हद के बाहर है। जैसे दर्पण में आग का प्रवेश नहीं, ऐसे राग का ज्ञान में प्रवेश नहीं है, इसलिए घबराना नहीं। रोग के काल में आंसू भी आ सकते हैं, आ जाने देना, वो आंसू पुद्गल का परिणमन है। राग भी आ जाए तो आ जाने देना, वो आश्रव का परिणमन है। आश्रव रुकेगा नहीं, आश्रव भिन्न दिखेगा, अभी मिथ्यात् रुकेगा, इसलिए मिथ्यात् रोक के जाना है यहाँ से, घबराना नहीं। वेदना भी हो जाए तो वेदना को भी जान लेना, वो वेदना भी आश्रव तत्व है, मैं नहीं, मैं तो उस वेदना को भी जानने वाला हूँ, मैं उस दुख को भी जानने वाला हूँ।
बहुत बढ़िया,
क्योंकि अभी अपने गुणस्थान में दुख भी हो जाएगा, राग भी आएगा, आंसू भी आ जाएंगे, पर ये हमारी हार नहीं है, हमारी स्वच्छता है, हमारे ज्ञान में झलकने वाले गे हैं ये।
दादाजी
सुन रहे हैं कि नहीं?
आप पूरा सुन रहे हैं भैया, पूरा एकदम सुन रहे हैं बिल्कुल।
और देखो समाधि नाम किसका है? समता का, समता का नाम समाधि है। आपको पता है अपनी रत्नत्रय निधियों को अपने साथ सुरक्षित ले जाने का नाम समाधि है। और ये बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हमें अपनी रत्नत्रय को अपने साथ ले जाएं यहाँ। देखो अपने टोडामल जी साहब थे, उनको जब उनकी मृत्यु की सूचना दी गई कि आपको हाथी के नीचे दबाया जा रहा है, तो सारे उनके साथी दुखी हो गए कि अरे आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? अरे मुझे पता नहीं चलता और मेरी देह छूट जाती तो मैं कैसे वेद विज्ञान करता, कैसे कैसे समता भाव को धारण करता। अच्छा है मेरे होश तरीके, मेरे सामने मेरी देह छूटेगी तो मैं सावधानी तो रख सकूंगा, समता तो रख सकूंगा, समाधि तो कर सकूंगा। ऐसे ही आप होश में अपने चेतना को बरकरार रखो, समता धारण करने के लिए अच्छा समय आया है अपने लिए। अपन अपनी पूरी निधियां लेकर जाएंगे यहाँ से, अपना कुछ नहीं बिगड़ा है, इसलिए होश रहते अपना सारा काम होने वाला है। तो घबराना मत कि हमको हम यदि आत्मा है तो हमें दुख क्यों होता है। अरे हम आत्मा है तो हमें दुख नहीं होता, हमें दुख का ज्ञान होता है, इसलिए हम दुख का ज्ञान करने वाले हैं, दुखी होने वाले नहीं है। दुख तो कभी हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि दुख आश्रव का तत्व है, हमारा तत्व नहीं है। और एक का तत्व दूसरे के तत्व में मिल जाए तो वस्तु व्यवस्था ही खत्म हो जाए, सात छह तत्व हो जाए। इसलिए दुख हो तो होने दो दुख को, राग हो तो होने दो राग को। मैं तो दोनों का दूर से नेत्र की भांति जानने देखने वाला हूँ। कम से कम अपने तत्व का निर्णय तो करके जाओ दादाजी, हम भगवान है भगवान, क्या भगवान मर, हाँ भगवान का मरण होता है क्या, भगवान का जन्म होता है क्या? हम तो जन्म मरण से रहे थे, और देह का भी जन्म मरण नहीं होता। अरे दो वस्तुओं के मिलने को जन्म कहते हैं और दो वस्तुओं के बिछड़ने को मरण कहते हैं। और यदि ऐसा है कि दो वस्तुओं के बिछड़ने को मरण कहते हैं, तो मैं तो पहले से ही इससे अलग बैठा हूँ, मुझे क्या चिंता होती, ये तो पहले से मेरा मराया बैठा हुआ है। इसलिए प्रसन्न होने का काम है, दुख यानों का कोई काम नहीं है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, ज्ञानी जब धरते हैं, ओ मोहरी पुछन में तब नष्ट हो जाता, प्रेमी जब चढ़ते हैं, ओ अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही जिन अनंत चतुष्टय धारा है, दिगंबर भेष न्यारा है। देखो मुनिराज पर उत्सर्ग होता है और विश्वेणी मारते हैं, ऐसे कैसे संभव है? अरे उस आत्मा में इतना वजन है, उतना बल है कि दुख के काल में अनंत सुख प्रकट हो जाता है। दुख के काल में अलग से नहीं, उसी काल में अनंत सुख प्रकट होता है जिस काल में उत्सर्ग होता है। इसलिए बिल्कुल हम चाहें तो अभी आनंद भोगें, अपनी मान्यता अपने ज्ञान अपने श्रद्धान को सही करके। इसलिए मैं गायक हूँ, इसको तो बिल्कुल खूटा गाड़ देना, ये वाला
खूटा गाड़ना जी, मैं गायक हूँ इस बात का खूटा गाड़ देना।
हाँ बाकी सब भूल जाओ, पर ये याद रखना, आपने वो आत्मानंद जी बाबा जी का नाम सुना है कभी? एक आत्मानंद जी बाबा जी हुए, वो 105 बरस तक जी कर गए, तो उनसे आखिरी में किसी ने पूछा, समत भाई साहब ने पूछा कि बाबा जी अंत समय में आपकी जुबान यदि रुक जाएगी, आप बोल नहीं पाएंगे, तो फिर हम आपको क्या सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे, आप क्या बताओगे हमको? तो कहने लगे एक उंगली दिखा दी बस, एक एम को खलू शुद्ध हो इतना उंगली दिखा देना तुम हमें, बस हमें उंगली देख के समझ में आ जाएगा कि मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, स्पर्शी हूँ, अनहारी हूँ, इतनी तैयारी रखो, इतनी तैयारी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सुनने का भी अटक नहीं, एक उंगली दिखा देना, अपने नाती से बोल दो कि बेटा एक उंगली दिखा देना बस, तुम हमें, हम समझ जाएंगे
कि हमें एक हो,
कि मैं एक
गायक भाव हूँ,
एक गायक भाव हूँ। ऐसे ही कहना नाती से, पहले दोनों हाथ जोड़ना, फिर दोनों हाथ अलग कर देना, मतलब मैं शुद्ध हूँ, मुझ में कुछ नहीं मिला आज तक, दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है दोनों। इसलिए समता का नाम समाधि है, रत्नत्रय को संग ले जाने का नाम समाधि है। खूब, एक तो खूब प्रसन्न रहो अंदर से, प्रसन्नता का नाम आराधना है, अपने को आत्मा जान के प्रसन्न रहने का नाम आराधना है, और यदि प्रसन्नता का नाम आराधना है तो दुखी होने का नाम विराधना है। जितने दुखी होगे उतनी विराधना होगी, जितने प्रसन्न रहोगे उतनी आराधना होगी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इसलिए 24 घंटे आराधना करो, खूब खुश रहो, खुशी से बताओ, खुशी से। क्या कह रहे हैं, सच्ची आराधना है ये, सच्ची। पंडित साहब की बात मुख से सुनी परिभाषा है, अपने को आत्मा जान के प्रसन्न रहने का नाम आराधना है। अब आप कितने प्रसन्न हो, अपने को देह जान के दुखी रहने का नाम विराधना है। अभी देखो, अपन दिगंबर जैन है ना, तो कोई अपने अपने भगवान के ऊपर कोई कपड़ा डाल देगे तो भगवान की बेइज्जती है, अपने भगवान पे कोई आंखें जल दे तो भगवान परिग्रही हो गए, भगवान भगवान नहीं बचे, है कि नहीं दादाजी? तो अपने भगवान पर कोई आवरण डाले तो भगवान भगवान नहीं बची, विराधना हो गई। ऐसे ही आप अपने भगवान के ऊपर देह का आवरण क्यों डाल रहे हो? आप तो देहातीत हो ना, आप क्यों देह का आवरण डाल के विराधना कर रहे हो अपनी? आप क्यों रोग का आवरण डाल के अपने भगवान की विराधना कर रहे हो? आप अब बताओ, आपकी इनकी उम्र कितनी है हिमालय?
83 भैया, 83।
अरे इनकी नहीं है ये, इनकी नहीं है, तुम गलत बता रहे हो। इनको इनकी सही उम्र बताओ।
अनादि अनंत।
और इनसे कहना कि इतनी है कि नाप भी नहीं पाओगे आप, इतनी है।
वाह।
इसलिए तिरासी साल का बूढ़ा मत देखना अपने को।
जी।
मैं 83 साल का नहीं हूँ, नाप नहीं पाओगे इतना बड़ा हूँ।
नाप नहीं पाओगे इतना बड़ा हूँ, पंडित जी कह रहे हैं।
इतना बढ़िया। और आपको लग रहा है कि हमें रोग हुआ है, और आप इस रोग को दूर करने के चक्कर में हो। रोग तो लगा है भाव का, रोग तो लगा है देह का, दूर भी करना तो वो वाला करो, ये वाला मत करो। और सबसे बड़ा रोग तो यही है कि मैं रोगी हूँ, इसलिए आवरण डाल के अपने भगवान की बेइज्जती नहीं करना अपन को। आपको पता है आवरण कैसे डलता है? कि जैसे अपना बच्चा बहुत अच्छा हो, लेकिन आपको शंका हो गई हो कि ये बिगड़ गया है, तो अब वो बिगड़ा बिगड़ा दिखेगा आपको, तो आप उससे अच्छे से बात ही नहीं करोगे, लड़ोगे भिड़ोगे मारोगे। तो बताओ, एक अच्छे बच्चे पे आवरण किसने डाला? आपने डाल लिया शंका करके। ऐसे ही बना बनाए हाजिर हजूर भगवान मौजूद है, अब मैं रोगी हूँ आवरण डाल लिया, मेरी तबीयत खराब है आवरण डाल लिया, मैं बूढ़ा हूँ आवरण डाल लिया। अरे क्यों व्यर्थ में आवरण डाल के दुखी हो रहा है? खूब प्रसन्न हो, खूब आनंदित हो। गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे कि आंखों के सामने एक तिनका आ जाए तो पीछे बहुत बड़ा समुन्दर हो तो भी दिखाई नहीं देता, एक तिनके की आड़ में। ऐसे ही कोई भी छोटी सी मान्यता आपको बने बनाए भगवान को, ज्ञान समुद्र आत्मा को नहीं देखने देगी। इसलिए कोई भी आड़ मत डालना, कोई भी आड़ मत डालना।
पंडित जी ने दृष्टांत दिया कि जैसे आंखों के सामने एक छोटा सा तिनका भी आ जाए तो भरा हुआ समुद्र को ढक देता है, उसी प्रकार हमारे हमारे ज्ञान के सामने यदि हम आवरण डाल दें, ये देह मेरा है, ये रोग मेरा है, तो पूरे ज्ञान समुद्र रूपी आत्मा को ढक देगी, वो देखने नहीं देगी अपने भगवान को, ये कहने पंडित जी।
इसलिए आवरण मत डालना आपको, और कोई दूसरा आवरण नहीं डालता, हम ही डालते हैं, तभी तो ज्ञानावरणी बनता है। अरे ज्ञानावरणी, ज्ञान न रोके दर्शनावरणी दर्शन, वो जो मोहिनी करम, ये जो मोहिनी करम ना रोलावे आत्मा, है सुरक्षित आत्मा। आत्मा में कोई आवरण नहीं है, आत्मा में कोई कर्म नहीं है, सच्ची कह रहे हैं दादाजी, ये समय बड़ा कीमती है। जैसे अभी वो चाइना बॉर्डर पे लड़ाई चल रही ना, तो सैनिक 24 घंटे चौकस रहते हैं एकदम। ऐसे ही आपको 24 घंटे चौकस रहना है। चौकस रहना मतलब प्रसन्न रहना है, क्षण भर के लिए भी दुखी नहीं होना है, क्षण भर के लिए डिप्रेस नहीं होना है।
बराबर।
और बिल्कुल किसी के प्रति कोई दुर्भावना रही हो तो क्षमा मांग लो, अच्छा मौका है अभी।
बहुत बढ़िया।
सबसे क्षमा, सबको क्षमा,
सबसे क्षमा, सबको क्षमा, क्षमा सबको क्षमा।
मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ, पहले ही हाथ जोड़ के।
बहुत बढ़िया।
किसी के किसी को बुरा कह दिया हो, भला कह दिया हो, पर्याय दृष्टि से देखा हो, क्षमा मांग लो। अपन निसल लो के जाओ, ना कोई हमारे निमित्त से दुखी रहे, ना हम किसी के निमित्त से दुखी रहे।
बहुत बढ़िया।
दोनों का अपना अपना व्यापार फर्स्ट क्लास चलता रहे, वो भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे। ऐसे ही कोई सल लोगों को दान आदि की तो बता दो बच्चों को कि बेटा इतना इतना कर दो हमारी तरफ से, हमें ऐसी भावना है।
बता दिया भैया, बता दिया।
हाँ बता दिया तो बहुत अच्छा किया है ना। और
जी, जी, जी।
और यदि कभी कभी वेदना ज्यादा हो, मन ना लगे, तो तीर्थ यात्रा कराया करो सबने से करके।
हाँ हाँ बिल्कुल।
गिरनार की कर लिया करो, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर तीर्थ यात्रा कर लिया करो आप अकेले ही।
अकेले तीर्थ यात्रा कर लिया करो, पंडित
आप गए पहले गए हुए हो, इस स्मृति ज्ञान में सब उपलब्ध है अपने। केवल ज्ञानी भगवान केवल ज्ञान से देखते हैं, और हम अपने स्मृति ज्ञान से देखते हैं, मति ज्ञान से। तो आप देखते रहो अपनी स्मृति में, देखो जरा सन्देश से करके यात्रा करो, ऐसे सामायिक करते रहो अपने 24 घंटे। विदेश क्षेत्र चले गए, समुद्रण में पहुंच गए, सिमंदर नाथ 500 धनुष के विराजमान है, उनके दर्शन किए, वहीं वंदना करी, दिव्य ध्वनि का पान किया, ऐसे अपने बढ़िया अंदर ही अंदर अच्छा अपने मन को लगाए रखो इन सब चीजों में। जो गाथाएं याद हो, जो ग्रंथ याद हो, उनको दोहराते रहो। अपना कुछ नहीं बिगड़ रहा उसमें, अपना कुछ नहीं जा रहा उसमें। बहुत 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 अच्छा शासन मिला है दादाजी अपन को। और ये जो समय है अंत का, ये अंत भला तो सब भला है। इस समय जिसने जंग जीत ली, कभी कभी क्रिकेट मैच में आखिरी बॉल पे डिसीजन होता है, आपको आखिरी बॉल पे डिसीजन होता है कभी कभी मैच का।
बैट बल्लो गेम है, बैट बल्लो लास्ट बॉल मारे छक्को मारे जीती जाए टीम, हार जीत की टीम जीती जाए।
ऐसे आखिरी बॉल पे फैसला होता है, तो अपना भी आखिरी बॉल पे फैसला करना है अपन को अपना, क्योंकि अंत भला तो सब भला। इसलिए खूब खुश रहो, खूब मस्त रहो।
बहुत बढ़िया।
अरे आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है अचरज, ज्ञानी आश्चर्य करते हैं कि सुख से बना हुआ जीव दुखी बैठा है, बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य नहीं होता। शक्कर एक दिन क्या बोले, मैं आज खारी हो गई हूँ। ओहो, तू खारी हो गई है कि तेरी खारी उड़ गई है आज? तू खारी कैसे हो गई? मीठी शक्कर तू खारी कैसे हो गई? जैसे लोक में मीठी शक्कर खारी नहीं होती, ऐसे सुख से बना हुआ आत्मा कभी दुखी नहीं होता। दुख आत्मा से भिन्न तत्व है, आत्मा सुख का बना हुआ है, आत्मा आनंद का बना हुआ है। दादाजी को रोग के बारे में पता है?
नहीं नहीं नहीं।
हाँ कोई बात नहीं, देखो वहाँ कमजोरी बराबर है। तो देखो दादाजी, आपका नाम क्या है?
कुंदन लाल जी, कुंदन लाल।
हाँ कुंदन लाल कमजोर है कि भगवान आत्मा कमजोर है?
कौन कमजोर है? कुंदन लाल कमजोर है, भगवान आत्मा कमजोर है।
अरे कुंदन लाल आपका नाम थोड़ी है, ये तो हिमालय के दादाजी का नाम है। आपका नाम तो भगवान आत्मा है, इसलिए बताओ कमजोरी किसको है, रोग किसको है, बीमार कौन है, भर्ती कौन है? मैं तो भर्ती नहीं हूँ, मुझे तो कोई भर्ती नहीं कर सकता। कभी कभी कैसा लगता है, कैसा मिथ्यात्व है, अपन को इस जेल में बंद करके रख दिया, देह को देह रूपी जेल में। अब ये जेल से हमें निवृत्ति मिल रही तो हम रो रहे हैं। हमें जेल से निकाला जा रहा तो हम रो रहे हैं, कैसा मिथ्यात्व है जी। हमारे लिए तो खुशी का पल होना चाहिए कि हमें देह रूपी जेल से निकाला जा रहा है। बरसों बरस हम इस देह रूपी जेल में बंद थे, अब मौका मिला है मुझे इसमें से निकलने का। घोसिया माना नहीं चाहिए कि बैंड बजाओ बैंड। आज मेरा मृत्यु महोत्सव है, आज मेरा मृत्यु महोत्सव है। दस सच बात तो ये जिनकी मृत्यु भी महोत्सव बनती है फिर भगवान बनते हैं। दुनिया के लोग जन्म में खुशियां मनाते होंगे लेकिन ज्ञानी तो मरण में खुशी मनाते हैं, क्योंकि अब मरण का दोबारा जन्म नहीं होगा, मरण का मरण होगा। अब मौत मरेगी, मैं नहीं मरूंगा, अब मौत मरेगी। अब तो मैं जिंदा हुआ हूँ, अनंत काल से मौत के साथ मैं मरता रहा लेकिन अब मैं जिंदा हुआ हूँ और अब मौत मरेगी। अब मेरा मरण नहीं है, मौत के मरण का नाम समाधि मरण है। मोह के मरण का नाम समाधि मरण है।
बहुत बढ़िया।
इसलिए आप तो कोई अलौकिक तैयारी करो, खुशियां मनाओ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक क्षण भी दुखी मत रहना। एक क्षण जी, स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। अच्छा, भगवान है तो भगवान तरीके नहीं जीना चाहिए क्या?
जीना चाहिए।
अरे कुछ तो समय निकाले आत्मशुद्धि के लिए, नरभव का मिलना नहीं केवल विलास है। आनंद सोत बहरा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। खूब मस्ती करो दादाजी, मैं तो क्या बोलूं आपसे। आप मेरे सामने होते तो नाच के दिखाता कि ऐसे नाचो, और नाच नहीं सकते तो कम से कम हृदय में तो नाचो। हृदय का नाच तो सबसे अच्छा होता है, उसमें खुशियां होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। जब घाटे की कोई बात ही नहीं है तो हम रो क्यों रहे? जब हमारा कुछ घट ही नहीं रहा तो हम उदास क्यों बैठे? जब हमारा कुछ छूट ही नहीं रहा तो हमें इतनी बेचैनी किस बात की? रोग हो तो हो, कमजोरी हो तो हो, हम कमजोर नहीं है मगर। और ज्ञानी तो देह की कमजोरी के काल में और बलिष्ठ हो जाते हैं।
वाह,
तब तो बल बढ़ाने का काल है, कमजोर होने का काल नहीं है।
बहुत बढ़िया।
इसलिए खूब खुशियां मनाओ, खूब प्रसन्न रहो और देह की तरफ देखना बंद कर दो।
बहुत बढ़िया।
देह को इन लोगों को सौंप दो, घर वालों को, कहना देह की चिंता तुम लोग करो, मैं अपना आत्मा संभालता हूँ। जैसे श्रीमद
हमें दे दो, आप आत्मा संभालो, देह हम संभालेंगे।
जैसे वो अस्पताल वाले रोगी को संभाले है ना, ऐसे देह को घर वालों को सौंप दो। हिमालय तुम दादा को संभालो, पर हम परदादा को संभालते हैं।
बराबर।
जो अंदर बैठा है भगवान आत्मा, इसलिए खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। एक भी सल मत पालना, जो भी सल हो बिल्कुल निकाल देना सामने से।
बहुत बढ़िया।
बता दो, एक भी सल मत रखो, संकलेशता को छोड़ दो।
बहुत बढ़िया।
आर्त्रोत परिणाम छोड़ दो।
बहुत बढ़िया।
ना कुछ अपना बाहर इष्ट है, ना अपना कुछ अनिष्ट है। ना किसी ने अच्छा किया है, ना किसी ने बुरा किया है।
बहुत बढ़िया।
ना किसी ने मेरा कुछ छीना है, ना किसी ने मुझे कुछ दिया है।
बहुत बढ़िया।
बाहर में जो कुछ हो रहा है होने योग्य हो रहा है, थवाने योग्य थवा है। इसलिए खूब खुशियां मनाओ आप तो। और वो बड़ा वाला समाधि मरण पाठ है ना, वो पढ़ते रहा करो बीच बीच में।
हाँ सुनाते भैया, रोज सुनाते।
तो तुम्हारे जी ये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। देखो आप जीवन भर तैयारी करते रहो, और एग्जाम के दिन तबीयत खराब हो जाए तो साल खराब होती है।
पूरे साल भर अपने परीक्षा की तैयारी की, और परीक्षा के दिन अपन बीमार हो जाए और परीक्षा नहीं दे पाए तो पूरा साल खराब होता है, ऐसा कह रहे पंडित जी।
ऐसे ही आप जीवन भर स्वाध्याय करते रहे और इस समय आपने परिणाम बिगाड़ लिए तो अनंत काल खराब हो जाएगा अपना।
ओहो दादा जी, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, कह रहे पंडित जी अनंत काल खराब हो जाएगा, परिणाम बिगाड़ दिए तो।
हाँ अनंत काल खराब होगा, अनंत बार माँ के पेट में आना पड़ेगा। इसलिए इसलिए कोई ये समय खराब नहीं करना।
बढ़िया,
बहुत लाभ है। आप थोड़े दिन धैर्य रख लोगे ना तो अगली पर्याय में देवगति और उसके बाद मोक्ष, दो पर्याय का सौदा बचेगा बस।
बहुत बढ़िया।
और यदि परिणाम खराब करोगे तो लाइन लग जाएगी भवों की।
वाह वाह वाह,
बहुत विचित्र संसार, बहुत विचित्र। एक मारीची कुमार ने आदिनाथ की विराधना की थी तो 3,56,00,000 गिनती के भाव हो गए, 3 गिनती वाले। अनगिनतों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वितरस पर्याय वाले हैं 3,56,00,000 के। स्थावर की तो गिनती नहीं है, निगो चला गया जी। इसलिए थोड़ा धैर्य रखो, बड़ी कमाई होगी। थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत लाभ होगा। इसलिए बहुत अच्छा मौका है, आपका बड़ा पुण्य का उदय है। अब तो जितना समय बचा है खूब धर्म आराधना में बिताना, समय खराब नहीं करना। जो समय खराब नहीं करता, समय उसे खराब नहीं करता। जो समय की कद्र करता है उसे समय सार मिलता है। हाँ, जो समय की कद्र नहीं करता उसका समय सार छिन जाता है उससे।
बहुत बढ़िया।
इसलिए आपको अपने समय सार स्वरूप शुद्धात्मा को खूब ध्याना, खूब मस्ती करना और देह को परिवार जनों को सौंप कर, आप तो आज इसे सौंप दो, कहना है भैया तुम संभालो शरीर, और अस्पताल वालों से कहना तुम संभालो रोग, और हम संभाल रहे हैं भगवान आत्मा को।
वाह वाह वाह,
इससे ज्यादा सोचना भी नहीं, इसके बारे में सोचना आज से ही बंद कर दो।
अपना
घर परिवार बैठा है वो चिंता करेगा देह की, डॉक्टर नर्सेस चिंता करेंगे रोग की, और हम रहेंगे निश्चिंत। इसी को कहते हैं चक्रवर्ती का पुण्य। जैसे चक्रवर्ती के नौकर चाकर लगे होते हैं ना तो वो चिंता नहीं करता, ऐसे ही आप चैतन्य चक्रवर्ती हो, आप तो बिल्कुल निश्चिंतता से बैठो।
चैतन्य चक्रवर्ती हो आप?
चैतन्य चक्रवर्ती हो, उनके यहाँ तो 9 निधियाँ थी, तुम्हारे यहाँ तो निधियों का पार नहीं है। उनके उनके यहाँ 14 रत्न थे, तुम तो रत्नाकर हो। इसलिए अपने से बड़ा कोई नहीं, अपने से गौरवान्वित कोई नहीं, अपने से उत्कृष्ट कोई नहीं है। मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ऐसा भजन, ऐसा भजन बढ़ाओ। इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम संलेखना है। दीनता अनुभवने से ही दीन का हाते, दीनता का अनुभव नहीं करना, दीनता का अनुभव।
दो पंक्ति
ये भी सुन लो आप। अरे दो घड़ी निधिनाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को जो देखते वे समकिति कहते, प्रभुता में जो रम रहे वो सिद्ध कहते। अपनी प्रभुता को रमो, अपनी प्रभुता में रमो, बाहर ना भरमाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बस बार न भरमाओ। दो घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दादा जी खूब खुश रहो, खूब मस्त रहो, खूब प्रसन्न रहो। अपना सकाल आ गया है, अब अपन केवल ज्ञान की ओर एक सोपान और आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं आखिरी बात कहता हूँ, आप बिल्कुल दुखी मत हो ना। अब यदि आप यहाँ से जाओगे अगली पर्याय में और खुशी मनाना, हम केवल ज्ञान की ओर नजदीक आ गए, हम मुक्ति की ओर नजदीक आ गए, हमारा एक भाव का फेरा और मिट गया। अरे प्रभु बीती विभावरी आज हुआ अरुणोदय सिंह, जो मिते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। अब तो चलो अपने उस गांव जहाँ से दाला है, सिद्ध दशा है और सिद्धि चारों ओर है, ऐसी हम आपकी हमारी सबकी दशा हो, और आप खूब खुश रहे यही मंगल भावना से मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। और मेरा खूब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक करो और जीवन के अंतिम क्षण में आप 100/100 नंबर लेकर आओ और अनंत काल के लिए दोबारा जन्म मरण के क्रंदन से दूर हो जाओ। ना आप माता होंगे ना पिता, अब तो एक गायक होगा, गायक का आनंद होगा, गायक का वेदन होगा और सिद्ध दशा होगी, यही मंगल भावना है। मेरा आपको बहुत बहुत सत्सत नमन। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता हैं, आप शीघ्र अभ्युदय को प्राप्त हों, मुक्ति को प्राप्त हों, यही मंगल भावना।
हेलो भैया।
हाँ बोलिए।
हाँ जय भैया, प्रणाम।
जय जय ठीक है
भैया। भैया हृदय से आपका बहुत 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 धन्यवाद भैया। एक्चुअली दादाजी ने पूरा संबोधन बड़े ध्यान से, एक्चुअली वो दीप जगह तो बोल नहीं पा रहे थे भैया, लेकिन उनकी हाँ उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी, जो चेहरे का एक्सप्रेशन था, जो भक्ति से उनके हाथ खड़े हो रहे थे हवा में, ये वास्तव में देखने लायक थे।
बहुत
बढ़िया भैया, सबसे लंबा संबोधन आता चला, बहुत खुशी हुई भैया।
बहुत बढ़िया। ओके जय जिने
जय भैया, धन्यवाद।